ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराशि भागवतम अध्याय 15 श्लोक संख्या 2 बोर्ड पे लिखा हुआ है, अब हम पाठ करेंगे। आप लोग हमारे पीछे दोहराइए। ज्ञान निष्ठा ज्ञानी कव्या ज्ञान निष्ठा ज्ञानी कव्या ज्ञानत्यामिच्छति ज्ञानन्यत्यमिच्छति देव च तद्भाव देव च तद्भावे सादितरभ्य यथा अर्हत सादितरभ्य यथा अर्हत। इसका पिछला एक श्लोक है, उसका भी जो है तात्पर्य नहीं है, तो उस श्लोक में पढ़ लेते हैं, फिर दोनों का हम लोग सदा पढ़ेंगे। अच्छा अवसर है कि भागवतम का दो श्लोक आज प्रातःकाल उच्चारण हो जाए। इस पर शास्त्र में लिखा हुआ, अगर किस घर में भागवतम का चाहे आधा भी श्लोक भागवत महात्म्य लिखा हुआ है, कि आधा श्लोक भी किसी घर में लिखा हो तो बहुत शुभ माना जाता है। और प्रातःकाल अगर भागवतम के श्लोकों को उच्चारण करने से कहीं असंख्य जब पुण्य प्राप्त पुण्य मिलता है, तो दो श्लोक उच्चारण कर ज्यादा पुण्य कमा देंगे। तो आप लोग बोलिए। सिनार दुवाच कर्मनिष्ठा द्विज कोचित तपोनिष्ठा नृपा परे स्वध्यायन्य प्रवचनेन केचन ज्ञान योगय। श्री नारद उवाच, नारद मुनि ने कहा, कर्मनिष्ठा अनुष्ठान के प्रति आसक्त अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र होने के अनुसार, द्विज दो बार जन्म लेने वाला विशेषता ब्राह्मण, कोचित कुछ, तपनिष्ठा तपस्या में आसक्त, नृप हे राजा, अपरे अन्य, स्वाध्याय वैदिक वाङ्मयी का अध्ययन करने में, अन्य लोग प्रवचने वैदिक वाङ्मयी पर भाषण देते हुए, केचन कुछ, ज्ञान योग्य ज्ञान के अनुसरण करने तथा भक्तियों का अभ्यास करने में, ज्ञान योग्य। दूसरा श्लोक का शब्द ज्ञान निष्ठया निर्विशेषवादी या ब्रह्म में लीन होने के इच्छुक आध्यात्मिकवादियों को ज्ञान दान में दिया जाने वाला, कव्यानी पितरों को तर्पण में दी गई सामग्री, अन्यंतम भवबंधन से मुक्ति इच्छता इच्छुक व्यक्ति को देव देवताओं को दी जाने वाली सामग्री च भी तत् अभाव ऐसे प्रगत अधर्मवादियों को ना रहने पर तत् अभाव शायद किया जाए इतरभ्य अन्य को अर्थात सकाम कर्मियों को यथा अर्हता योग्यता के अनुसार विवेक से दोनों का अनुवाद श्री नारद मुनि ने कहा बोली हे राजन कुछ ब्राह्मण सकाम कर्म में अत्यधिक आसक्त रहते हैं कुछ तपस्या में और कुछ वैदिक साहित्यों का अध्ययन करने में तो कुछ भले ही कम क्यों ना हो ज्ञान का अनुशीलन करते हैं और विभिन्न योग का विशेषता भक्तियों का अभ्यास करते हैं जो व्यक्ति अपने पितरों या स्वयं की मुक्ति का इच्छुक हो उसे चाहिए कि ऐसे ब्राह्मणों को दान दे जो विशेषता अद्वैतवाद में निष्ठा ज्ञान निष्ठा रखता हो ऐसे उच्च ब्राह्मण के अभाव में सकाम कर्मी कर्मकांड में अनुरक्त ब्राह्मणों को दान दिया जाए। भव बंधन से छूटने की दो विधियां हैं। पहले विधि ज्ञानकांड तथा कर्मकांड पहली विधि है और दूसरा विधि है उपासना कांड। वैष्णव कभी भी ब्रह्म में लीन नहीं होना चाहता वे तो भगवान का नित्य दास बनकर उनके प्रेम भक्ति करना चाहता है। इस श्लोक में अन्यतम इच्छता शब्द उस व्यक्ति को बताता है जो भव बंधन से छूटकर भगवान में लीन होना चाहता है किंतु जिन भक्तों का लक्ष्य भगवान की साक्षात संगति करना है उन्हें कर्मकांड या ज्ञानकांड के कार्यों को स्वीकार करने की कोई इच्छा नहीं रहती क्योंकि शुद्ध भक्त इन सब के ऊपर है। अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मा ज्ञानादितम शुद्ध भक्ति में ज्ञान या कर्म का लेश भी नहीं रहता। फलस्वरूप जब वैष्णव जन दान वितरण करते हैं तो वे ज्ञान कांड या कर्म कांड ब्राह्मण नहीं टूटते। इस प्रसंग में अद्वैत गोस्वामी का उदाहरण सर्वश्रेष्ठ है जिन्होंने अपने पितरों को सात कर्म करने के बाद हरिदास ठाकुर को दान दिया। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार से उत्पन्न हुए हैं, ब्राह्मण परिवार में नहीं, अतः वे ज्ञान कांडी या कर्म कांडी नहीं थे। अतः दान तो उच्च कोटि के अध्यात्मवादी भक्त को ही देना चाहिए क्योंकि शास्त्र का संस्तुति है। मुक्ता नाम सिद्धा नाम नारायण परायण सदुर्लभ प्रसन्नात्मा कोटि स्वापी महामुनि। हे महामुनि लाखों मुक्त तथा मुक्ति ज्ञान में सिद्ध व्यक्तियों में से कोई एक भगवान नारायण कृष्ण का भक्त होता है। ऐसे भक्त जो पूर्णतः शांत है वे अत्यंत दुर्लभ होते हैं। वैष्णव का यह पद ज्ञानी से ऊंचा होता है। अतः अद्वैत आचार्य ने दान देने के लिए हरिदास ठाकुर की उपयुक्त पात्र समझा। परमेश्वर भी कहते हैं हरिभक्ति विलास में नमे अभक्त चतुर्वेद मद भक्त सच प्रिय तस्मे देयम तत ग्राम सच पूज्य तो भले ही कोई व्यक्ति संस्कृत वैदिक साहित्य का अध्ययन अत्यंत पंडित क्यों ना हो उसे तब तक मेरा भक्त नहीं माना जाता जब तक वो शुद्ध भक्त ना हो। किंतु यदि स्वपच के परिवार में भी उत्पन्न होकर कोई शुद्ध भक्त है और उसे कर्म या ज्ञान का उपभोग करने की लालसा नहीं है तो मुझे अत्यंत प्रिय होता है। निस्संदेह की सभी तरह से सम्मान होना चाहिए और वो जो भी दे उसे ग्रहण करना चाहिए। ऐसे भक्त मेरे ही समान पूज्य है, अतः कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो या ना हो, किंतु भगवान की भक्ति करने से वो कर्मकांडी या ज्ञानकांडी ब्राह्मण से ऊपर होता है। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि वृंदावन के कर्मकांडी या ज्ञानकांडी ब्राह्मण कभी कभी हमारे मंदिर के निमंत्रण अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि हमारा मंदिर अंग्रेजी मंदिर कहलाता है। किंतु शास्त्र के साक्ष्य तथा अद्वैत आचार्य द्वारा प्रस्तुत उदाहरण के अनुसार हम भक्तों को प्रसाद देते हैं, चाहे वे भारतीय हो या यूरोप के या अमेरिकी हो। यह शास्त्र का निष्कर्ष है कि तमाम ज्ञानकांडी या कर्मकांडी ब्राह्मणों को खिलाने की अपेक्षा एक शुद्ध भक्त शुद्ध ब्राह्मण को खिलाना श्रेष्ठ है, चाहे वो जहाँ का हो। इसकी पुष्टि इसमें भगवद्गीता में हुई है। अपि चेतु दुराचार भजन्ते माम अनन्यभा साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितः सं। चाहे कोई चाहे कितनी ही गृहित कर्म क्यों ना करे, यदि भक्ति में लगा रहता है तो साधु माना जाता है, क्योंकि वह सम्यक रीति से स्थित रहता है। अतः उससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई ब्राह्मण परिवार का है या अब्राह्मण परिवार का। यदि वो कृष्ण में पूर्णतः अनुरक्त है तो वो साधु है। मुकम करो कि वाचालुं पंगुलंगयते गिरि यत् कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दिनकारिणी गुरुवे गौरचंद्राय राधिका कलय च कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय पदार्चन नमो विष्णु। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग भागवतम के सातवें स्कंद के 15वें अध्याय का दूसरा श्लोक हमने पाठ किया। तो इस समय जैसे हम सब जानते हैं कि भागवतम के अंदर जो 14वें अध्याय है यहाँ प्रसंग चल रहा है युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि का संवाद। नारद मुनि परम वैष्णव है और ये पूरा ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं और ये जब भक्ति का प्रचार करते हैं। तो नारद मुनि यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज के पास राजसूय यज्ञ के समय आए और युधिष्ठिर महाराज के पूछने पर उन्होंने जब प्रहलाद महाराज का चरित्र का वर्णन किए, उसके बाद जब प्रहलाद महाराज चरित्र वर्णन करने के बाद युधिष्ठिर महाराज ने समझा कि प्रहलाद का क्या सौभाग्य था कि उनके लिए भगवान प्रकट हुए और उनको जो उनकी रक्षा किए और कितना प्रिय भक्त है। तो ऐसा सौभाग्य तो मुझे प्राप्त नहीं हुआ। युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार सोच कर तो मेरी मुक्ति का उपाय क्या है, तो और इस हम सबके भलाई के लिए मानव समाज के कल्याण के लिए युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सारे प्रश्न किए। तो इस पर जो नारद मुनि जो बहुत सुंदर सुंदर जो है उत्तर दे रहे हैं तो हम सब सुनते हुए आ रहे। तो पिछले अध्याय में लगभग अभी तो नया अध्याय शुरू हुआ, लगभग पिछले अध्यायों में नारद मुनि जब उनको बता रहे थे लास्ट में पहुंचे इस प्रश्न के ऊपर कि सतयुग में तो वहां का धर्म था कृत्य ध्याय विष्णु, वहां का धर्म था कि अष्टांग योग का पालन किया जाए और भगवान का ध्यान करना धर्म था। तो लेकिन इस सतयुग में कुछ ऋषि मुनियों ने देखा कि परस्पर लोगों का व्यवहार में कमी हो रही है, तो उन्होंने ये देव पूजन का विघ्नों का पूजन करने का व्यवस्था उन्होंने ऋषि मुनियों ने स्थापना की है। तो इस संसार में हमें जो भी वस्तु प्राप्त हो रहे हैं ये ऋषि मुनियों का देन है, ऋषि मुनियों का देन है, तभी जाके सृष्टि चल पा रहा, धर्म का पालन हो पा रहा। बिना धर्म के तो संसार चल नहीं सकता, बिना भगवान के पूजा के ये सृष्टि के मंगल नहीं हो सकता। ये सृष्टि का जो है किसी प्रकार कल्याण नहीं हो सकता भगवान का पूजा ना हो। स्कंद पुराण में कहा गया है, स्कंद पुराण में उत्कल खंड में कहा गया है, भगवान विष्णु की अगर भव्य रूप से पूजा होती है तो भगवान संतुष्ट होते हैं और सारा जगत का मंगल होता है। हम देखते भारतवर्ष में बहुत सारे इस प्रकार जो है प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पूजा होता है। इसके अलावा बाहर के देशों में भी चाहे किसी भी रूप से व्यक्ति भगवान का नाम ही लेता है तभी जो संसार चल रहा है। तो ऋषि मुनियों का देन है, तो ऋषि मुनियों ने सत्ययुग में स्थापना की है। जो नारद मुनि बता रहे हैं कि डीटी वर्षित उन्होंने स्थापना की है, तो डीटी वर्षित स्थापना की कि लोगों का जो वापस में व्यवहार में कमती हो रही थी। देखो सत्ययुग के बाद त्रेता युग आया, उसके बाद कलयुग आया, तो इससे पता लगता है कि त्रेता युग में भी डीटी वर्षित शुरू हो चुका था। ये जो चारों चीज है ये रहती है, सभी युगों में रहता है, सूक्ष्म रूप में रहता है, लेकिन हर युग में उसका अपना धर्म का प्रधानता होती है। जैसे कलयुग में हरिनाम संकीर्तन का प्रधानता है, भगवान का नाम पर कीर्तन करने का प्रधानता है, लेकिन रहता सब कुछ है। तो इस तरह जब विग्रह सेवा में लोग नियुक्त हुए तब नारद मुनि ने बताया कि विग्रह सेवा में नियुक्त होकर होने से क्या है कि वापस में ये हम भक्तों के लिए बहुत एक शिक्षाप्रद वस्तु है। वापस में भक्तों में अगर संबंध ठीक नहीं रहेगा, एक दूसरे को विश्वास नहीं करेंगे और एक दूसरे को जो हम लोग प्रशंसा करेंगे और एक दूसरे को जो निंदा करेंगे, तो इससे हमारा भगवत अर्चन हमारे भक्ति में बाधा पड़ती है। हम प्रतिदिन सुनते हैं दस नाम अपराध में पढ़ते हैं कि इस सब अपराध से हमें बचना चाहिए, साधु निंदा करना, देवी देवताओं की निंदा करना, ये सब जो नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार जब वो वापस में अगर भगवान की विघ्नों की पूजा कर रहे हैं, अगर हम लोग के भक्तों की अगर श्रद्धा नहीं रखते, भक्तों को हम लोग पूज्य नहीं मानते, तो वो हमारा जो डीटी वर्शिप है वो अपना पूरा पूरा फल नहीं देगा। उसको जो है कनिष्ठ स्तर का भक्त माना जाता है, कनिष्ठ भक्त, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, तीन कैटेगरी के भक्त होते हैं। तो जो डीटी वर्शिप करे, अच्छा डीटी वर्शिप अच्छा करता है, लेकिन भक्तों से हिस्सा करता है, तो वो कनिष्ठ अधिकारी है। तो लेकिन फिर नारद मुनि बता रहे और हमारे रूप गोस्वामी जी भी बता रहे, ले कनिष्ठ अधिकारी है, कनिष्ठ भक्त है, लेकिन वो कर्मकांडी से और जो ब्रह्मवादियों से लाखों गुना श्रेष्ठ है, लाखों गुना श्रेष्ठ है। इस तरह कहकर नारद मुनि ने पिछले अध्याय में ब्राह्मणों का वर्णन किए, ब्राह्मणों का महिमा का वर्णन किए कि ब्राह्मण सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ है। और पिछले हफ्ते में जो है हमारे ऋषिकेश रुक्मणि कृष्ण प्रभु जी भी इसका पर काफी अच्छा व्याख्या दिए थे। तो सभी मनुष्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण भगवान को प्रिय होते हैं और भगवान का भगवत आचरण का पालन करते हैं। और इस प्रकार जो भगवान भी ब्राह्मणों को अपने पूज्य मानते हैं, भगवान भी ब्राह्मणों का पूजा करते हैं। बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किए थे, भगवान की जो ब्राह्मणों का पूजा, भगवान कहते हैं कि मेरे पास अच्छे गुण हैं, इसीलिए क्योंकि मैं ब्राह्मणों का पूजा करता हूँ। लक्ष्मी जी को बताते, मेरे पास ऐश्वर्य है, सभी कुछ इसलिए कि मैं ब्राह्मण का पूजा करता हूँ। और ब्राह्मण क्या कहते हैं, हमारे पास एक गुण, जो भगवान के जो गुण है, भगवान तो गुण के समुद्र है, गुण के समुद्र है, उस गुण में कुछ गुण जो है हमारे में आते आता है, तो इसलिए भगवान में और ब्राह्मणों में संबंध है। यहाँ जो ब्राह्मण की बात की गई है वह वैष्णव ब्राह्मण के विषय में कहा गया है। इस ब्राह्मण के वर्णन करने के बाद तो आज के इस 15 अध्याय के पहला श्लोक में नारद मुनि बता रहे कि ब्राह्मण जो है 5 कार्यों में निपुण होते हैं। हम समझे, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि प्रभुपाद ने संस्था किस लिए बनाया, ब्राह्मणों को विकास करने के लिए। ब्राह्मण बनेंगे, प्रभुपाद बताते अगर कुछ भी संसार में अगर कुछ भी ब्राह्मण एकदम निष्ठ ब्राह्मण बन गए तब भी संसार में सुधार हो सकता है। पहले के समय जो राजतंत्र चलाते थे वो ब्राह्मण लोग चलाते थे, ब्राह्मण लोग ऋषि मुनि लोग जो है राजा को नियुक्त करते थे, कौन राजा बनेगा, उनके बिना तो कोई राजा नहीं बन सकता। जैसे कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, ये ब्राह्मण थे, ये शिक्षक थे। बाकी जब राजा वेन भी जब राज्य पद का उसे बिठाया गया तो ऋषि मुनियों ने बिठाया, और जब वो गड़बड़ी की राज्य ठीक से नहीं चलाया तो ऋषि मुनियों ने दोबारा उसको जो है राज्य पद से उतार दिए। ये पावर थी कि ऋषि मुनियों का, इसलिए ऋषि मुनियों का देन है ये संसार में, इतनी अच्छी फैसिलिटी है। ऋषि मुनि लोग चाहते हैं कि सभी लोग संसार में सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवे, सभी का दुख जो समाप्त हो। तो इसीलिए जब हम लोग जो है हमारे में जो एक ऋण भी होते हैं, ऋषियों का ऋण होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण, माता पिता का ऋण और ऋषियों का ऋण जो है ऋण भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है ये सब अध्ययन करके हमें दिए हैं। तो ब्राह्मण लोग राजतंत्र चलाते थे तो इसीलिए समाज में सुखी था। तो आज ये ब्राह्मण लोग के निर्देश पर नहीं चल रहा, इसलिए जो समाज में इतने जो है खराब स्थिति चल रही है। तो हम सबको समाज में अच्छी स्थिति लाने के लिए ब्राह्मण बनना चाहिए। तो ब्राह्मण के लिए नारद मुनि बता रहे, हे राजन 5 गुण सुनिए। कुछ ब्राह्मण सकाम कर्म में अत्यधिक आसक्त रहते हैं, सकाम कर्म करते हैं, कुछ तपस्या भी करते हैं और कुछ वैदिक साहित्य का अध्ययन भी करते हैं, और कुछ लोग ज्ञान का अनुसरण करते हैं। चौथा और पांचवा है, कुछ लोग प्रवचन करने में, प्रचार करने में लगे रहते। ये जो है ब्राह्मण का 5 कार्य है कि कर्मनिष्ठा, तपोनिष्ठा, स्वाध्याय, प्रवचन और ज्ञान निष्ठा। तो ये जो है ब्राह्मण इस कार्य में जो है लगे रहते हैं। ब्राह्मण जब वो देखो, ब्राह्मण ये नहीं कि ये पांचों के पांचों कार्यों में ही लगा रहेगा। ये कोई भी एक कार्य में ब्राह्मण निपुण होता है, वैष्णव ब्राह्मण कोई भी इस कार्य में निपुण होता है। जैसे स्वाध्याय करना, प्रवचन करना, ज्ञान निष्ठा और तपस्या करना, अगर जब ब्राह्मण इन कार्य में लगा रहेगा तो शुद्ध रहेगा, और शुद्ध रहेगा तभी जब वो जो है समाज को अच्छा गाइडेंस दे सकता है। तो ये ब्राह्मणों की यहाँ पे चर्चा की गई है। तो उसके बाद दूसरे श्लोक में, आज के श्लोक में यहाँ जो लिखा हुआ है इसमें कहा गया है, अगर अपने पितरों का तर्पण करने के लिए, उनको उत्तम गति देने के लिए अगर हमें सही ब्राह्मण मिल नहीं पाता, हालांकि दान देना चाहिए, जो ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण उनको दान देना चाहिए, जो ज्ञानी है उनको दान देना चाहिए, अगर ऐसे ब्राह्मण मिल नहीं पाता तब भी तब भी क्या करना चाहिए, मनुष्य को दान देना चाहिए, भला ही वो व्यक्ति एक कर्मकांडी ब्राह्मण को दान दे। तो यहां जब यहां कहा गया जो सकाम कर्म में लगा हुआ है, जो शुद्ध भक्ति में नहीं लगा सकाम कर्म में लगा हुआ है, तो उसको भी दान देना चाहिए। यहां पर नारद मुनि बता रहे हैं, क्योंकि नारद मुनि भूत भविष्य महान आचार्य थे, भूत भविष्य वर्तमान को जानते थे। तो भविष्य में किस प्रकार हमारी मानसिकता होगी और किस प्रकार ब्राह्मण समाज का पतन होगा और ब्राह्मण समाज के पतन होने पर भी धर्म कैसे बच सकता है, उसके लिए नारद मुनि ने बच सकता है, इसलिए नारद मुनि यहाँ पे जो सलाह दे रहे हैं। तो दान देना नहीं छोड़ना चाहिए। हम कभी ऐसे सोचते हैं भाई देखो हमें तो शुद्ध भक्त मिलते नहीं है, और जो कि जब शुद्ध भक्तों दान देते तो वो धन को लाकर भगवान की सेवा में लगाते, ऐसा भक्त मिलते नहीं है, तो हम दान देना छोड़ देंगे। तो बाहर के जो पंडित है, बाहर के जितने हजारों हजारों मंदिर है वहां जो पंडित है वो जो है वो तो कर्मकांडी है, या अब निश्चित रूप से कर्मकांड जानते हैं, ज्योतिष जानते हैं, उनको दान देने की आवश्यकता है, उससे क्या हमें फायदा नहीं होगा? नहीं। तो इससे नारद मुनि हमें कहना चाहते हैं कि हमारा स्वभाव है दान देना, दान देना मनुष्यों का स्वभाव है, उस स्वभाव को ना छोड़े। अगर आपको शुद्ध भक्त नहीं मिलते तो फिर भी हम सकाम कर्मी ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। समझ लीजिए आज के समय में आप मान सकते हैं, आज के समय में ब्राह्मण समाज जो है समाप्त हो रहा है, समाप्त हो रहा है, अपने स्तर से गिरे हैं। तो इसका इसका जो ब्राह्मण समाज का जो लोग जितना ब्राह्मण अपना धर्म का जो त्याग करके जो इस ऐसे अवस्था में आ चुके हैं, इसका जिम्मेदारी कौन है? इसका जिम्मेदारी हम सभी लोग हैं। पहले के समय ऐसे होता था कि राजा लोग, जिस हम शास्त्र पढ़ते भागवतम पढ़ते हैं कि राजा लोग कितने कितने ब्राह्मणों को दान देते थे, अब समझिए इतना दान मिलता था ब्राह्मणों को, उनको दूसरी किसी की आवश्यकता नहीं थी, वो अपने तपस्या में, अपने भक्ति में, अपने ज्ञान निष्ठ कर्म निष्ठ तपोनिष्ठ में ही वो लगे रहते थे। वशिष्ठ मुनि को कितने जो है कितने दान में, सभी ऋषि मुनि कितना कितना दान मिलता था, लाखों लाखों हजार हजार गायें मिलते थे, और वो भी सोने के जो खूर होता था, सिंह में भी सोना लगाया जाता था, और सबको संतुष्टि पूर्वक राजा लोग जो है दान देते थे। तो दान की तो कमी नहीं थी, तो जब दान की ब्राह्मणों कमी नहीं थी, उन्हें किसी का आगे की किसी का अभाव नहीं था, तो वो अपने घर में लगे रहते थे। लेकिन आप बताइए, अगर हम बताइए अपने 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 जो अपने आप से पूछिए, हम ब्राह्मणों कितना दान देते हैं? एक जो है बहुत हम पहनेंगे बड़ी अच्छा धोती, ब्राह्मणों को देंगे एक जो है ऐसा धोती देंगे जैसे आर पार सब दिखाई देता है, तो ऐसे दान देंगे तो बेचारा कहाँ संतुष्ट होगा, तो निश्चित रूप से लालसा वो जो है लालच में आएगा। तो ब्राह्मण समाज कैसे व्यवस्थित रहे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र कैसे व्यवस्थित रहे, ये जो कर्तव्य बनता राजा कर्तव्य बनता। तो राजा ने जो छोड़ दिया, और जो हम लोग जो है ये लोग जो गृहस्थ है वो भी दान देना बंद कर दिए, तो ब्राह्मण समाज जो फिर जो है अपना भाई उसका भी बाल बच्चे हैं, उसका भी सब कुछ है, उसका भी पेट है, तो इसलिए जो वो अपने स्थिति को छोड़कर थोड़ा बहुत लालची बन चुका है, इसमें हो चुका है। तो लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति को फिर भी दान देना चाहिए, ये हम नहीं कह रहे, जो नारद मुनि कहना जो है वही हम बता रहे हैं। सकाम कर्मी अर्थात जो कर्मकांडी जो ब्राह्मण है वो जो है उनको जो दान अवश्य देना चाहिए। तो ये जो यहाँ पे जो अनुवाद में नारद मुनि का कहना है, श्रील प्रभुपाद आत्मा बता रहे हैं कि ब्राह्मण में
और वैष्णव में क्या अंतर है। ब्राह्मण का मतलब है कि जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म जानते कि ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, ज्ञान का अनुशीलन में रहता है, वो ब्राह्मण है। लेकिन जो वैष्णव है, जो भक्त है, वो भगवान को केवल ब्रह्म ही नहीं मानता, भगवान को एक व्यक्ति मानकर उनकी पूजा करता है, उनकी उपासना करता है। इसीलिए वो जो है वैष्णव जो ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, ये जो वैष्णव ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। ब्राह्मण क्या करता है, ज्ञान का अनुशीलन करते हुए कि ज्ञान कांड और कर्म कांड में लगा रहता है। तो देखिए कर्म कांड भी कोई गलत नहीं है, अगर साधारण समाज में बताया जाए कि कर्म कांड में क्या होता है, अरे कुछ ना कुछ तो तुम्हारा पूजा, तुम्हें ये इच्छा है तो तुम कुछ ना कुछ पूजा करके वो कार्य तुम कर सकते हो, ये तो कर्म कांड है और क्या। तो ये चीज है। तो लेकिन शुद्ध भक्ति से इससे परे है, अन्य अभिलाषा का शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम, क्योंकि सकाम कर्म में ब्रह्म ज्ञान में कि उसको ज्ञान और कर्म का जो है उसको आशा है, कुछ पाने की इच्छा है उसके अंदर, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है और भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा, इसलिए कर्म कांड कर रहा है, ज्ञानी बन रहा है तो कुछ पाना चाहता है, ज्ञानी बनना चाहता है। तो ज्ञानी बने क्या करेगा, जाने वो ब्रह्म को जान पाएगा। लेकिन भक्त क्या उससे परे होता है, अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्म दि अनावृतम, तो इसलिए ज्ञान कर्म से परे होते हैं भक्त, इसलिए वो जो श्रेष्ठ है। तो इसीलिए इस प्रकार जो वर्णन के श्री प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में, और कह रहे भक्त जो है एक वैष्णव से कैसे श्रेष्ठ होते हैं, ये जो शास्त्र के आधार पर जो बता रहे भगवान शिव पार्वती जी को बता रहे, मुक्ता नाम सिद्धानाम नारायण परायण सदुर्लभ प्रसन्नात्मा कोटिस्वपि महामुनि, जो लोग मुक्ति और सिद्धि से लोग कामना करते हैं, लेकिन जो नारायण परायण है, जो नारायण का भक्त है, वो उससे परे है। इसीलिए नारायण के भक्त बहुत ही दुर्लभ है, और वो प्रसन्न आत्मा उनकी जो मन जो है हमेशा प्रसन्न रहता है भगवान की भक्ति करने के कारण, भगवान के सुंदर श्री विग्रहों के देख दर्शन करने के कारण, उनको सजाने के कारण, उनको प्रसाद ग्रहण करने के कारण, उनका नाम कीर्तन करने के कारण उसका मन शांत रहता है। तो ऐसे हे पार्वती, ऐसे भक्तों बहुत ही दुर्लभ है बता रहे। फिर भगवान भी बता रहे इसको, सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में वर्णन कर रहे, भगवान का भी अपना एक वाक्य है, नमे अभक्त चतुर्वेद, अगर कोई चतुर्वेदी ब्राह्मण अगर वह भक्त नहीं है तो वो मुझे जो है उतना प्रिय नहीं है। मद्भक्त सपच प्रिय, अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म भी नहीं लिया, चाहे किसी भी परिवार में हो, शूद्र परिवार में हो, चंडाल हो, स्वपच हो, लेकिन वो जो मुझे प्रिय है। और वैसे भक्त अगर मुझे कुछ देता है, मैं उसे ग्रहण करता हूँ और उसका जो भी पूजा करता है वो मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन कोई जो चतुर्वेदी ब्राह्मण है और लेकिन मेरा भक्त नहीं है तो उसका पूजा को मैं स्वीकार नहीं करता। इसलिए भक्त जो है बहुत अधिक प्रिय है। प्रभुपाद बता रहे कि जैसे हमारा वृंदावन मंदिर में जब लोगों को निमंत्रण देते हैं, लोग आते नहीं है, अवश्य हमारा वैष्णवगण आते हैं, जो गौरिया वैष्णव आते हैं, नहीं बाकी लोगों को जब निमंत्रण दिया तो नहीं आते, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, सब जो है विदेशी भक्त लोग, अंग्रेजों का मंदिर है, विदेशी भक्त लोग है, उन जो है इस प्रकार जो वे जो करते हैं। लेकिन हम इस गौड़िया वैष्णव परंपरा में जो भी बात बता, जो भी है सब शास्त्रों के आधार पर है, शास्त्र के आधार पर है, अब शास्त्र कभी झूठा हो नहीं सकता। शास्त्र क्या है, वेदों का वाक्य क्या, भगवान की वाणी है, भगवान का वाणी कभी जो है नहीं हो सकता। हालांकि हो सकता है समाज में ब्राह्मण बहुत है, ब्राह्मण जो है बहुत था, अभी नहीं है, लेकिन आज के समय में हर कोई भक्ति को स्वीकार करता है, भक्ति को स्वीकार करता पूरा समाज में। देखिए आपके इस शहर में भी सब लोग क्या है, भगवान के प्रति आसक्त है। हाँ, सभी लोग जो वृंदावन धाम चले जाते हैं और सब लोग जो राधे राधे करते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो भक्ति का प्रभाव है वो ब्राह्मण का ही प्रभाव तो खत्म हो चुका है, कलयुग बढ़ चुका है। केवल ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मण बन के रह नहीं सकते, सभी लोग इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। अरे कहां कर पाएंगे, वो भगवत गीता ही पढ़ नहीं पाते, अब ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मण कहां हो पाएंगे। जो भी भक्त लोग थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र सुन लेते हैं, थोड़ा बहुत जो है राधे राधे कर लेते हैं, हालांकि ये भी भक्ति का ही तो एक अंश है। तो इस प्रकार जो है ये शास्त्र के आधार पर है। तो प्रभुपाद जी ने जो प्रभुपाद बता रहे कि भगवत गीता का एक उदाहरण दे रहे हैं, भगवत गीता में कहा गया है चाहे कितने बड़ा पापी व्यक्ति भी क्यों ना हो, यदि वो भगवान का भजन करता है तो वो उसको सामान्य व्यक्ति नहीं मानना चाहिए। वो क्या है, भगवान को, वो जो साधु है वो भगवान को अति प्रिय है। तो इस प्रकार जो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी भी बता रहे कि जो ब्राह्मण जो वैष्णव है वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ होते हैं, तो ब्राह्मण से श्रेष्ठ होते हैं। और इस प्रकार जो हमें प्रभुपाद ये शिक्षा दे रहे हैं, जो हमने सुना भी, नारद मुनि बता रहे कि चाहे किसी भी स्थिति में ब्राह्मण का इग्नोर जो है नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी ब्राह्मण का सम्मान नहीं कर सकते ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उनको इग्नोर करना ये वास्तव में समाज के लिए हानि है। आपको पूरा जगत में सब जगह जो इस्कॉन का भक्त नहीं मिल जाएंगे, इतने हजारों हजारों मंदिर जो बना हुआ है सब जगह इस्कॉन के भक्ति जाकर पूजा पाठ करे ऐसे संभव नहीं हो पाएगा। अभी तो नहीं है, हो सकता है भविष्य में हो जाए। तो लेकिन जो भी कर रहे हैं उनको सम्मान दे, तो वो लोग बेचारे वो भी कुछ थोड़ा बहुत जो है धर्मनिष्ठ बनेंगे तो समाज का कल्याण होगा। समाज में इतना चर्च बन रहा है, इतना मस्जिद बन रहा है, हाँ उसमें तो हम कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं कर रहे, तो अगर मंदिर में कोई ब्राह्मण पूजा कर रहा है उसके लिए हम क्यों ऑब्जेक्शन करें, उसको भी सम्मान करें। चाहे कैसे भी मंदिर हो उसका हम जो है सम्मान करना चाहिए, चाहे देवी देवता मंदिर भी है तभी हमें हाथ जोड़ के उनका सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। तो तभी जो है कुछ जो नारद मुनि की जो डिजाय है कि ब्राह्मण समाज की किस प्रकार जो है सम्मान किया जाए वो भी हो सकता है, और प्रभुपाद का डिजाय है कि भक्त जो है भगवान भक्ति में लगे रहे, तो हम लोग इस तरह भक्ति में जो है लग सकते हैं। हरे कृष्ण। आप लोगों का कोई प्रश्न है तो हम एक दो मिनट हम प्रश्न ले सकते हैं, कोई प्रश्न होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर प्रश्न करो। हाँ, कर्मकांडी सुंदर प्रश्न का सुंदर प्रश्न है कि कर्मकांडी ब्राह्मण और ज्ञानकांडी ब्राह्मण जो है इसमें क्या अंतर है। तो प्रभुपाद इसके जो यहाँ बता रहे, जो ज्ञानकांडी का मतलब है जो अद्वैत ज्ञान में जो निष्ठा रखता है, अद्वैत ज्ञान यानी कि जो है भगवान जो है एक है, अद्वैत ज्ञान जो शंकर भाष्य का भाष्य में जो निष्ठा रखता है और इस प्रकार जो है ज्ञान में लगा रहता है, ज्ञान का अनुशीलन करने से वो क्या उसको क्या मिलेगा कि जो जो परम जो शक्तिमान है वो एक ब्रह्म है, उसको ज्ञानकांड कहा जाता है। ज्ञानकांड केवल ज्ञान शास्त्रों अध्ययन कर रहा है लेकिन यही नहीं पता चला कि भगवान कौन है, यही पता नहीं चलता सभी पता नहीं चलता है, ऐसे समाज में बहुत है। और कर्मकांड का मतलब है कि जैसे ज्योतिष शास्त्र जानना, जैसे ब्राह्मण जो जो कर्मकांड करते हैं, विवाह करवाते हैं, गृह प्रवेश करवाते हैं, बाकी हर चीज का पूजा करवाते हैं, देवी देवताओं की पूजा करवाते हैं, क्योंकि हर किसी की ना कुछ इच्छाएं हैं, वो देवी देवताओं के पास जाते हैं तो देवी देवताओं को उस प्रकार से पूजा करना पड़ता है, तो वो प्रसन्न होते हैं। तो ब्राह्मण उसका उत्तराधिकारी बनता है कि मेरी जो भौतिक इच्छाओं की के लिए मैं जो देवता के पास गया हूँ उसका वो पूजा करवा, उस प्रकार जो है उस वो जो है नहीं नहीं उपासना काम तो भक्ति है, उपासना में वो भगवान की भक्ति में लगता है, उपासना काम जो भगवान की उपासना में लगता है, ज्ञान में के ज्ञान का अनुसरण करता है। हाँ, हम लोग उपासना काम में अगर भागवतम गीता पढ़ रहे हैं लेकिन जो है ये जो है उपासना कांड भक्ति है, ये भक्ति है, ये ज्ञान कांड में नहीं, निज्ञान कांड में नहीं। और जब हम शिला प्रभुपाद जी के कि शुभ भक्त के अंदर में रहकर जब करते हैं तो मतलब ही नहीं बनता कि ज्ञान कांड कर्म कांड हमें छू जाए। अरे शिला प्रभुपाद की श्री आधार अधिकार भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलेश्वर महारानी की जय, ग्रंथ राशि भागवतम की जय, युधिष्ठिर महाराज की जय, नारद मुनि की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रमाण।